तभी वहां मेड आकर अदब से बोली, बीबी साहिबा, डिनर लग चुका है। ये सुनते ही जुबेदा बेगम ने रेहाना बेगम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब आप खाना खाकर ही जाएंगी, ऐसे कैसे बिना डिनर किए चली जाएंगी? बिल्कुल, अरमान तुरंत बोला, और रेहान भाई भी आज हमारे साथ ही डिनर करेंगे। रेहान पहले से ही अरमान के साथ घर के अंदर आ चुका था। थोड़ी ही देर में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर अपनी अपनी जगह संभाल कर बैठ गए। माहौल बाहर से बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन हर दिल के भीतर अपनी अपनी बेचैनियां थीं। जुबेदा बेगम ने चारों ओर नज़र दौड़ाई, फिर बोली, ऐसा करो, कोई जाकर सादिया को बुला लो, डिनर उसके बिना अधूरा लग रहा है। बिल्कुल, रेहाना बेगम ने हामी भरी, उसे भी यहीं होना चाहिए। मैं जा रहा हूं उसे बुलाने, ये कहते हुए अरमान कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, लेकिन उससे पहले ही माहिरा ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं जाती हूं, वो मुझसे नाराज है तो मुझे ही उसे बुलाना चाहिए। माहिरा सीधा किचन की तरफ बढ़ गई। उधर सादिया उस वक्त किचन में मेट के साथ डिनर की आखिरी तैयारियां करवा रही थी। वो ध्यान से सलाद को प्लेट में सजा रही थी, जैसे अपने दिल की उलझनों को उस सलीके में छुपा रही हो। माहिरा ने उसे देखते ही तंज भरे लहजे में कहा, अरे तुम्हें खुद काम करने की क्या जरूरत है, समझी, रेहान की गुड लिस्ट में रहने के लिए सब कुछ खुद ही करती हो, राइट? सादिया के हाथ एक पल को रुक गए। सलाद की प्लेट अभी पूरी भी नहीं सजी थी कि माहिरा ने आगे बढ़कर वो प्लेट उसके हाथ से पकड़ ली। शांत लेकिन दृढ़ आवाज में सादिया ने कहा, मैं ये सब उनकी मोहब्बत में करती हूँ। तभी माहिरा ने जानबूझकर अपनी काम करने वाली लड़की हमीदा की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, हमीदा, तुम ये सलाद हमारे घर दे आओ, रेहान इस मोहब्बत को मिस कर रहा होगा। उसके शब्दों में छुपा इशारा साफ था, वो सादिया को जताना चाहती थी कि रेहान इस वक्त उसी के घर में मौजूद है। ये सुनते ही सादिया का दिल जोर से धड़क उठा। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, रेहान उधर हैं क्या? माहिरा ने हल्की मुस्कान के साथ पलटकर कहा, वो तुमसे पूछकर नहीं गए क्या? उसके इस सवाल में तंज भी था और एक अनकही चुनौती भी। किचन में पल भर के लिए सन्नाटा छा गया और सादिया के दिल में कई सवाल एक साथ उमड़ पड़े। सादिया ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, वो मेरे शौहर हैं, कोई कैदी नहीं जो हर बात मुझे बताकर जाए, अगर उधर चले गए तो क्या हुआ? उसकी आवाज़ में मजबूती थी, लेकिन आंखों की गहराई में छुपी बेचैनी साफ छलक रही थी। माहिरा ने भौहें चढ़ाई, मतलब तुम रेहान की निगरानी करने उधर नहीं आ रही? उसने तंज कसते हुए कहा, मैं तो तुम्हें सिर्फ बुलाने आई थी, दरअसल बात यह है कि अरमान की शादी को लेकर बातचीत चल रही है, इसलिए। अगर शादी के लिए मनाना ही था, सादिया बीच में बोल पड़ी, तो पहले इतना ड्रामा क्यों किया, तब मुझे क्यों अपमानित किया गया? माहिरा ने पल भर को नजरें फेर ली, फिर बोली, तब मुझे ये नहीं पता था कि तुम रेहान के दोस्त की बहन हो, ये सब रेहान की मर्जी से हुआ, अगर पहले पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। सादिया के होंठों पर हल्की कड़वी मुस्कान आ गई। हाँ, बेचारे फैजान की शामत तो सच में आ गई। कितनी अजीब बात है, सादिया ने आगे कहा, तुम्हें अपने शौहर की कोई फिक्र नहीं, लेकिन अपने नंदोई की खुशी की पूरी चिंता है। नंदोई मेरे, माहिरा ने जल्दी से कहा, रेहान तुम्हारे शौहर की बहन के पति हैं, सादिया ने शांत लेकिन तीखे लहजे में समझाया, तो नंदोई ही हुए ना? माहिरा कुछ पल चुप रही, फिर झुंझलाकर बोली, छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ तुम आ रही हो या नहीं? सादिया ने साफ शब्दों में कहा, नहीं, मैं नहीं आ रही। माहिरा कुछ कहने ही वाली थी कि सादिया ने उसे रोक दिया। उसकी आवाज़ अब धीमी थी, मगर हर शब्द में यकीन झलक रहा था। मेरी बात तो सुनती जाओ, हमारे खानदान में कितनी लड़कियां थीं जो रेहान के साथ शादी करने के लिए तरस रही थीं, मगर उनका निकाह मेरे साथ हुआ, क्योंकि वही मेरी किस्मत में लिखे थे और मैं उनकी। उसने गहरी नज़र से माहिरा को देखा, ये रिश्ता किसी की चाल या मजबूरी से नहीं, बल्कि तकदीर से जुड़ा है, समझी तुम? सादिया की बात सुनते ही माहिरा का चेहरा तमतमा उठा। बिना एक और शब्द कहे वो गुस्से में पलटी और तेज कदमों से वहां से चली गई। पीछे रह गई सिर्फ सादिया, अपने यकीन और अपने रिश्ते की सच्चाई के साथ। उधर डाइनिंग टेबल पर जुबेदा बेगम ने हल्के से लहजे में रेहान की तरफ देखते हुए पूछा, रेहान बताओ, हम लोग लड़की को देखने कितने बजे जाएंगे? रेहान कुछ जवाब देता उससे पहले ही फैजान खाना लेकर गुजर रहा था। तभी रहमान साहब ने उसे आवाज दी, अरे फैजान, तुम भी आओ ना, हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। हाँ बेटा, आओ बैठो, रेहाना बेगम ने भी कहा। फैजान ने अदब से सिर झुकाया और चुपचाप अपनी जगह पर आकर बैठ गया। उसकी नजरें प्लेट पर थीं, लेकिन माहौल में चल रही बातें वो साफ महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद रेहान ने सवाल किया, मगर लड़की को देखने जाएगा कौन कौन? इतने में माहिरा, जो अभी अभी किचन से लौटी थी, बोली, मैं और मॉम चले जाएंगे लड़की को देखने। और मैं भी, रेहाना बेगम ने तुरंत कहा, फिर खुद ही बात संभालते हुए बोली, मेरा मतलब हमारी फैमिली की तरफ से मैं और मॉम हो जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलिए, ठीक है? मैं और सादिया भी चलेंगे, रेहान ने कहा। ये सुनते ही जुबेदा बेगम ने चौंक कर पूछा, लेकिन सादिया क्यों नहीं आई अभी तक? माहिरा ने जल्दी से जवाब दिया, वो सोने चली गई है, सिरदर्द की शिकायत कर रही थी, इसलिए मैंने उसे आराम करने को कहा। जुबेदा बेगम ने हल्की सी हामी भरी, लेकिन उनकी आंखों में सवाल साफ झलक रहा था। तभी अरमान ने उत्साह में कहा, बिलाल, फैजान, तुम दोनों भी चलना। अरे नहीं, माहिरा तुरंत बोल पड़ी, ऐसे तो एक एक करके बहुत भीड़ हो जाएगी। उसकी नज़र खास तौर पर फैजान पर ठहरी हुई थी, दरअसल वो नहीं चाहती थी कि फैजान उनके साथ जाए। फैजान ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खाना खाते रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो।
इतने में जुबेदा बेगम ने बात पलटते हुए कहा, मैं तो कहती हूँ कि लड़की को यहीं बुला लेते हैं, क्या लड़कियां भी कहीं खुद को दिखाने जाती हैं? माँ आपकी बात भी ठीक है, रहमान साहब ने कहा, आखिर लड़की को तो शादी के बाद लड़के के घर ही आकर रहना होता है, ऐसा तो नहीं कि लड़का लड़की के घर जाकर बसे, इसलिए लड़की को ही आना चाहिए। ये कहते हुए जुबेदा बेगम ने अनायास ही फैजान की तरफ देख लिया। हर लड़की की किस्मत अच्छी नहीं होती कि उसे शादी के बाद शहर का घर नसीब हो। उनके शब्द हवा में तैरते रह गए। फैजान ने सिर झुका लिया और चुपचाप खाना खाने लगा। उसकी खामोशी में बहुत कुछ छुपा था, एक कसक, एक मजबूरी और वो सच्चाई जिसे वहां बैठे सभी लोग समझ रहे थे, लेकिन कोई खुलकर कह नहीं रहा था। डाइनिंग टेबल पर सब लोग मौजूद थे, मगर हर किसी के दिल में अपनी अपनी उलझने थी। बातचीत चल रही थी शादी की, मगर कई रिश्तों की दरारें उसी टेबल पर चुपचाप और गहरी होती जा रही थी। आर्यन उस रात काफी देर से घर लौटा था। घड़ी की सुइयां आधी रात के करीब पहुंच रही थी। घर में हल्की सी खामोशी पसरी हुई थी। उसके आने से पहले ही सानवी जय को सुला चुकी थी, लेकिन खुद सोने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी, वो बस उसी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही आर्यन हॉल के अंदर आया, सानवी तुरंत उठ खड़ी हुई। आप आ गए, उसने राहत भरी आवाज में कहा, मैं अभी आपके लिए खाना लगाती हूँ। रहने दो, आर्यन ने थके हुए लहजे में कहा, तुमने कहा था ना कि फुल टाइम मेट रखेंगे, वो कहाँ है? मैंने ही उसे उसके क्वार्टर्स में जाकर आराम करने को कह दिया, सानवी ने जवाब दिया। आप देर से आने वाले थे इसलिए सोचा परेशान ना हो। इतना कहकर सानवी किचन की तरफ बढ़ गई। किचन के अंदर रखी छोटी सी डाइनिंग टेबल पर वो जल्दी जल्दी खाना लगाने लगी। प्लेट, कटोरी और चम्मच की हल्की आवाजें उस खामोशी को और गहरा कर रही थी। आर्यन भी पीछे पीछे आया और कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसकी थकान उसके चेहरे से साफ झलक रही थी, लेकिन उसके माथे की लकीरों में कुछ और भी था, जैसे कोई बात दिल में अटकी हो। सानवी ने उसकी तरफ देखा तो ठिठक गई। क्या हुआ, उसने धीरे से पूछा, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपके चेहरे से लग रहा है कि कोई बात है।
आर्यन ने एक पल के लिए नजरें झुका ली, फिर गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा। सानवी, उसने कहना चाहा, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। सानवी ने खाना परोसते हुए फिर पूछा, आर्यन प्लीज बताइए, अगर कुछ परेशान कर रहा है तो मुझसे छुपाइए मत। आर्यन ने प्लेट की तरफ देखा, फिर सानवी की आंखों में।